بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في أرضه أجل الله في فرجه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المزلين. ساتویں دن کی دعا میں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دعائیں جو کہ ابن عباس سے منقول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے لیے ہر روز ایک دعا نقل فرمائی ہے، اور یہ تمام دعائیں ابن عباس سے نقل ہوئی ہیں. آج ہم ساتویں دعا کی تلاوت کر رہے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ. اے خدا، اس مہینے میں مجھے صیام اور قیام کی توفیق میں مدد فرما. وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، اور اس مہینے میں مجھے لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ فرما. ورزقنی فیہ ذکر کا بدوامہ، اور اس مہینے میں مجھے اپنے ذکر، اپنے دائمی ذکر کی توفیق عنایت فرما. بتوفیق کا یا ہادی المضلین، اے ہدایت، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، تجھے واسطہ تیری دی ہوئی توفیق کا، جو تو ہر اس مومن کو دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. اے خدا، آج کے دن میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ میرے روزے کو، صائمین کا روزہ، اور میرے قیام کو، میری نماز کو قائمین کا قیام بنا دے. روزہ رکھنے والے بھوکے اور پیاسے لوگ بہت سے ہو سکتے ہیں اس مہینے، لیکن وہ لوگ جو حقیقی روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس مہینے حقیقتاً قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بہت کم ہوں گے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المسلین کثیرا، نماز پڑھنے والے بہت سے ہیں، وَإِنَّ الْمُقِيمِينَ لَهَا قَلِيلًا، لیکن قیام کرنے والے بہت کم ہیں. قیام کرنے اور نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے. ایک بنیادی ترین فرق یہ ہے کہ قیام نتیجے عملی کے ساتھ ہے. جس طرح سے صیام بھوکا اور پیاسا رہنا، ان چیزوں سے بچنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک چیز ہے، لیکن صائمین کا صیام، حقیقی روزہ، دوسری چیز ہے. یہ صائمین کا صیام یا صائمین کا روزہ اس وقت ہوگا جب ہمیں روزے کا عملی نتیجہ ملے گا. روزے کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ شاید تم متقی بن جاؤ. یہ شاید کی قید بھی اسی لیے لگائی گئی کہ حقیقی روزہ رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح سے اٹھک بیٹھک کرنے والے، نماز कि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत फराहम करने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन वो लोग जो नमाज का अमली नतीजा पेश कर सकें, नमाज का अमली नतीजा हासिल कर सकें, वो बहुत कम लोग होंगे। नमाज का अमली नतीजा क्या है? इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशा एवल मुनकर, नमाज फाहशा और मुनकरात से बचाती है। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला, मैं चाहता हूँ कि ये मालूम करूँ कि मेरी नमाज और रोज़ा कबूल हुआ या नहीं। इमाम ने कहा, बहुत आसान है, तुम ये देखो कि नमाज और रोज़ा करने के बाद तुम गुनाह से कितना बचे। अगर नमाज तुम्हारे गुनाहों में कमी का ज़रिया बनी हो, अगर रोज़ा इस बात का बाइस बना हो कि जहाँ भी तुम गुनाह की तरफ बढ़े, तुम्हारे वजूद ने तुम्हें उस गुनाह से रोक दिया, बस इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नमाज और तुम्हारा रोज़ा कबूल हुआ। हम नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, क्यों? इसलिए कि गुनाहों से महफूज रहें। ऐ खुदा, आज के दिन या इस महीने में मुझे हकीकी साइम बना दे, हकीकी कायम बना दे, हकीकी नमाज पढ़ने वाला और हकीकी रोज़ा रखने वाला बना दे। क्यों? ताकि मैं व जन्निब नफी है मिन हफवात ही व आसाम ही, ताकि मैं इस नमाज और इस रोज़े के ज़रिए से गुनाहों से बच सकूं, मासियतों से महफूज रह सकूं। अगर हकीकी नमाज मैंने पढ़ी है तो मैं गुनाह की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर ये मेरा रोज़ा साइमीन का रोज़ा है तो मैं मासियत की तरफ कभी भी नहीं बढ़ूंगा। ये मैं किस तरह से हासिल करूं? वरज़ुक़नी फ़ी है ज़िक्र का बेदवा में ही, ऐ खुदा मैं गुनाहों से उसी वक्त बच सकता हूँ, मैं मासियतों से उसी सूरत में महफूज रह सकता हूँ जब तेरा ज़िक्र मेरे अंदर मौजूद हो, मेरे दिल में तेरी याद बसी हुई होगी तो मैं कभी भी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ूंगा। मोमिन के बारे में कहा गया कि अल-मोमिनु कसीरु ज़िक्र, मोमिन वो है जो अक्सर ज़िक्र करता है। मोमिन के बारे में हदीस है कि अल-मोमिनु दाइमु ज़िक्र, मोमिन हमेशा दाइमे ज़िक्र है, हमेशा खुदा का ज़िक्र करता है। इस ज़िक्र से मुराद अस्तग़फिरुल्लाह कहना नहीं है। हम तस्बीह हाथ में उठाएं और अस्तग़फिरुल्लाह कहना शुरू कर दें, तस्बीह हाथ में उठाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, तस्बीह हाथ में उठाएं, अल्लाहु अकबर का वर्द शुरू कर दें, नहीं। इस अमल को अरबी ज़बान में वर्द कहते हैं। अरबी ज़बान में ज़िक्र के माना ये हैं कि याद इंसान के दिल में हो। ज़िक्र खुदा यानी खुदा की याद, खुदा का ज़िक्र इंसान के दिल में इस तरह से बस जाए कि जब भी कोई अमल अंजाम देने लगे उसकी याद इंसान के सामने आ जाए। अगर नेक अमल अंजाम दे तो खुदा के खुलूस के साथ कि मैं ये अमल खुलूस नियत के साथ खुदा की बारगाह में अंजाम दे रहा हूँ, और अगर कभी शैतान उसको गुनाह की तरफ ले जाना चाहे तो खुदा का ज़िक्र आड़े आ जाए, खुदा की याद माने बन जाए, रुकावट बन जाए कि मैं जिसके दिल में खुदा की याद बसी हुई है किस तरह से मैं उसकी मासियत कर सकता हूँ, किस तरह से उसकी बारगाह में उसकी खिलाफ वर्जी कर सकता हूँ, ये अमल मुझसे अंजाम नहीं पा सकता। तो बस ऐ खुदा मैं इस महीने में हकीकी साइम बनना चाहता हूँ, हकीकी कायम बनना चाहता हूँ, गुनाहों और लग्जिशों से महफूज रहना चाहता हूँ, और उसका वाहिद ज़रिया तेरा ज़िक्र और तेरी याद है। ऐ खुदा मुझे आज के दिन, आज इस महीने में जो कि तेरी रहमतों का महीना है, मुझे अपनी याद से मामूर फरमा दे। ऐ खुदा ये सब कुछ तेरी दी हुई तौफीक के ज़रिए से ही मुमकिन है। मैं आज के दिन तेरी तौफीक तलब करता हूँ ऐ गुमराहों की हिदायत करने वाले परवरदिगार। खुदा से दुआ है कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपने दिलों को उसकी याद से मामूर कर लें, अपने दिलों में फ़कत और फ़कत उसकी याद को बसा लें ताकि गुनाहों से भी बच सकें और हकीकी इबादतों को भी अंजाम दे सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।